मुख्य समाचारों में, विक्टोरिया में कोविड के मामलों में मामूली गिरावट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया के अमीर देशों से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का आह्वान। और भारत ने किया लंबी दूरी के मारक सक्षम बम का सफल परीक्षण। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया की प्रमुख सुपरमार्केट्स में एंटीजन परीक्षण किट खरीदने के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। राज्य लॉकडाउन से बाहर आने के बाद किसी भी संबंधित बड़ी घटनाओं के लिए तैयार है। विक्टोरिया में 1355 नए स्थानीय रूप से प्राप्त कोविड 19 संक्रमण दर्ज किए गए और 11 मौतें भी हुई हैं। कोविड 19 कमांडर जोरोइन वीमर ने राज्य की अंतिम वायरस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की।
But can I also just recognize, I know that for thousands of Victorians, these daily opportunities have been a way to understand what's going on within the state, to deal with the anxiety that so many of us feel about what's going on with COVID as we start to move towards a more stable environment and a clearer way forward. I think we can all now start to, you know, become a slightly less fixated maybe on the day-to-day movement of our numbers and the day-to-day ins and outs of what's going on.
श्री वीमर ने ये भी बताया कि 18% नए मामले 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में थे, जबकि 2/3 40 वर्ष से कम आयु के थे। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ कल रविवार को हेलोवीन से पहले निवासियों को कोविड 19 सुरक्षित रहने का आग्रह कर रहा है। डॉक्टर जेरमी मैक्वांटी का कहना है कि आमने सामने संपर्क से बचना चाहिए।
Provide closed packaging for treats instead of communal lolly bowls, and consider ways of distributing treats that are safe, for example, putting them along the front fence or hidden in the yard, in the front yard.
राज्य में 236 नए कोविड 19 संक्रमण और 3 मौतें दर्ज की गईं। इस बीच 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के राज्य के 93.5% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। विक्टोरिया में 1,00,000 से अधिक संपत्तियां अभी भी बिजली के बिना हैं, क्योंकि भयंकर तूफान के बाद बिजली लाइनें टूट गई हैं। गुरुवार 28 अक्टूबर की रात विनाशकारी हवाओं के कारण राज्य भर में व्यापक नुकसान हुआ, जिससे लगभग 500,000 घरों की बिजली गुल हो गई। तब से बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम हो रहा है। विक्टोरिया के आपातकालीन प्रबंधन आयुक्त एंड्रू क्रिप्स का कहना है कि SESB सहायता के लिए मांगे गए लगभग 5100 अनुरोधों का जवाब दे रहा है।
With those 5,000 requests for assistance, it can basically be split up into about 4,000 related to trees, trees down, trees across power lines, across driveways. The other 1,000 is in relation to building damage. And that's everything from quite minor right through to where we know at this stage it's probably about 7 houses that have been assessed as uninhabitable.
महामारी के बाद से G20 नेताओं की पहली व्यक्तिगत बैठक के लिए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन रोम पहुंचे हैं। ये बैठक कल रविवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुरू होने से पहले हुई है। एक लीक मसौदा विज्ञप्ति में G20 देशों को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये समझा जाता है कि चीन, भारत और रूस उस स्थिति का समर्थन नहीं करेंगे। उन देशों और ऑस्ट्रेलिया ने कोयले को समाप्त करने की अंतिम तिथि के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। श्री मॉरिसन का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यात कोयले के संबंध में जनादेश और प्रतिबंध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन प्रौद्योगिकी समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
And it is important that we get these global technology solutions that can work as well in China and India and Vietnam as they do in Australia and Europe and the United States. This is why Australia, the Australian way to achieving net zero emissions, I think is a way that all countries can embrace, because it's about getting technology solutions at scale and at affordable costs, because that's what history tells us always makes the change.
लेबर ने सरकार की संशोधित जलवायु प्रतिबद्धताओं को बिना किसी सार के गैर योजना कहा है। लेबर नेता एंथनी एल्बनीज़ी का कहना है कि सरकार की पुरानी जलवायु नीति और उसकी नई के बीच का अंतर एक शब्द को हटाना है।
With his non-plan to hit net zero by 2050 through a vibe rather than through any great strategy. When the Prime Minister speaks in Glasgow, the other world leaders will know the difference between style over substance. And whilst we welcome the fact that the government has removed that one word from its net zero emissions position, that of preferable, we want to see some actual substance from this Prime Minister.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पनडुब्बियों के सौदे पर राजनयिक विवाद के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन से बाहर मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के लिए पनडुब्बियों के निर्माण का अनुबंध अमेरिका ब्रिटेन समझौते के पक्ष में टूटने के बाद फ्रांस की नाराजगी के बाद से दोनों नेताओं ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीकार किया है कि उनके प्रशासन ने सौदे के आयोजन में गड़बड़ी की है।
I think what happened was, to use an English phrase, what we did was clumsy. It was not done with a lot of grace. I was under the impression certain things had happened that hadn't happened. But I want to make it clear. France is an extremely valued partner. Extremely. And a power in and of itself.
राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि अब वो संबंधों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
The US was not the only party at stake as president for the state. And now what's important is precisely to be sure that such a situation will not be possible for our future. Stronger coordination, stronger cooperation.
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे अमीर देशों से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता में और अधिक देने के लिए कहा है। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने ये आह्वान किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के आधे अफगान बच्चों को गंभीर कुपोषण का खतरा है। ये चेतावनी भी दी कि इन सर्दियों में 12 मिलियन अफगानों को भोजन खिलाने की आवश्यकता हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मार्टिन ग्रिफिथ ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता बहाल करने की आवश्यकता है, जिसे तालिबान अधिग्रहण के कारण निलंबित कर दिया गया था।
Humanitarian aid is based on the principle that it is needed whoever is ruling, it is needed wherever people are in need. Humanitarian aid is unconditional in that sense. What I would be saying to those governments and those donors is, please give us your humanitarian money because we can make good use of it.
भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल शुक्रवार को संयुक्त रूप से उड़ीसा में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बम LRB का सफल परीक्षण किया। LRB को DRDO की प्रयोगशाला में डिजाइन और विकसित किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये परीक्षण भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ताकत कई गुना तक बढ़ाने वाली साबित होगी। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 75 सेंट और भारत के 56 रुपए 29 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई नंबर 3 और विश्व नंबर 57 जॉन मिलमेल को सेंट पीटर्सबर्ग ओपन के क्वार्टर फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी के हाथों 6-4 6-2 से हार का सामना करना पड़ा है। मिलमेल साल के अपने पिछले 5 टूर्नामेंट में 4था और अपने 6ठे क्वार्टर फाइनल में खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उनमें से किसी में भी जीत नहीं पाई। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में धूप, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।